संख्या 8 सपर्यगच्छ क्रम कायम व्रणम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभूह स्वयंभू यथार्थ तथ्य तो अर्थान वेदधाच्छाश्वतिभ्यः समाभ्यः। अन्वय सह पर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कवीह मनीषी परिभूह स्वयंभूह यथा तथ्यतः शाश्वतिभ्यः समाभ्यः अर्थान व्यदधात्। पद अर्थ सह वह आत्मा पर्यगात सर्वत्र व्याप्त शुक्रम तेजस्वी परम तेजोमय अकायम अशरीरी सूक्ष्म शरीर से रहित अव्रणम अक्षत घाव रहित छत्र रहित अस्नाविरम स्नायु आदि स्थूल अवयवों से रहित स्थूल पंचभौतिक शरीर से रहित शुद्धम निर्मल कल्मष रहित अपापविद्धम पापपुण्य से रहित शुभाशुभम कर्मों से रहित कबीह क्रांतदर्शी या सर्वद्रष्टा मनीषी मन का शासक सर्वज्ञ परिभूह सबसे ऊपर रहने वाला अर्थात सर्वश्रेष्ठ स्वयंभूह स्वयं ही होने वाला स्वेच्छा से प्रकट होने वाला अज शाश्वत नित्य मुक्त यथा तथ्यतः यथार्थ स्थिति के अनुसार यथा योग्य शुभ अशुभ कर्म अनुसार शाश्वतिभ्यः सनातन अनादि समाभ्यः वर्षों से या काल से अर्थान अर्थों को या कर्तव्यों को वेदधात निर्धारण किया है या विभाजित किया है। भाव अर्थ वह आत्मा सर्वत्र व्याप्त है तेज रूप है शरीर रहित है अक्षत है स्नायु आदि स्थूल अवयवों से हीन है सर्वदा निर्मल है पाप पोड़े से रहित है क्रांतदर्शी सर्वद्रष्टा है चंचल मन को नियंत्रित करने वाला है सर्वज्ञ है वह संसार में उपलब्ध सभी वस्तुओं से सर्वश्रेष्ठ है वह अजन्मा अर्थात कारण रहित है शाश्वत रूप से नित्य मुक्त है। वह आत्मा यथार्थ स्थिति के अनुसार सनातन काल से ही प्राणियों के कर्तव्यों का निर्धारण या विधान करता है। इसके पूर्व चौथे मंत्र में कहा गया है कि आत्मा की उपस्थिति में ही वायु प्राणियों के यथा योग्य कर्मों का निर्धारण करता है। जिस प्रकार राजा की उपस्थिति में उसके आदेश से सभी कर्मचारी राज्य कार्य की व्यवस्था करते हैं और उस व्यवस्था का श्रेय राजा को ही मिलता है, उसी प्रकार वायु के द्वारा यथा योग्य कर्मों का निर्धारण किए जाने पर भी इस मंत्र में आत्मा को ही श्रेय उस दिया गया है तथा यह कहा गया है कि वही शाश्वत काल से कर्तव्यों का निर्धारण करता है। टिप्पणी इस मंत्र में भी आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसमें आत्मा के लिए अकायम और अस्नाविरम ये दो पद भी आए हुए हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब शरीर ही नहीं तो स्नायु आदि कहाँ से होंगे, अतः अस्नाविरम यह पद व्यर्थ ही प्रयुक्त जान पड़ता है, किंतु अकायम पद से यहाँ आशय सूक्ष्म शरीर के निषेध तथा अस्नाविरम पद से स्थूल शरीर के निषेध का है। अर्थात वह आत्मा न तो स्थूल शरीर है न तो सूक्ष्म शरीर है, बल्कि इन दोनों से भिन्न है। इसके साथ ही आत्मा तो को शुक्र स्वरूप कहा गया है। कहने का अभिप्राय है कि शरीर में जो शुक्र बनता है वह संतानोत्पत्ति का कारण होता है, वही शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का मूल कारण है, जगत कारण और कार्य के नियमों से बंधा हुआ है। आत्मा इस नियम से मुक्त है अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण आत्मा ही है, आत्मा से परे दूसरा कुछ नहीं। मूल कारण होने से वह शुक्र स्वरूप है और संपूर्ण तेज एवं सामर्थ्य उसमें निहित है। उसी के तेज से सूर्य चंद्र तारागण और जगत का तेज है। इस बात को कठोपनिषद में भी कहा गया है, न तत्र सूर्यो भवति न चंद्र तारकम् नेमा विदितो भान्ति कुतो अयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद 2:2:15। अर्थात वहां सूर्य चंद्र और तारागणों का प्रकाश नहीं पहुंचता, विद्युत और अग्नि को वहां गति नहीं है, बल्कि आत्म प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उस आत्मा को कैसे जाना जाए, देखा जाए। वह स्वसंवेद्य है। इसके समाधान में कठोपनिषद में इस प्रकार विवेचन है। नायमात्मा प्रक्षणेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ये मे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विव्रणुते तनु स्वाम। कठोपनिषद 1:2:23। यह आत्मा न बुद्धि से न बहुश्रुत होने से प्राप्त किया जा सकता है। यह आत्मा जिसका वरण करता है उसे ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह अपने स्वरूप को प्रकट करता है। आत्मा का ज्ञान आत्मा से ही प्राप्त होता है। स्वामी शंकराचार्य जी ने आत्मा के विविध भावों एवं लक्षणों को एक श्लोक में इस प्रकार ग्रंथित किया है। यदा प्नोति यदा दत्ते यद याति विषह यानिह यच्चास्य संततो अभावस्तस्मादत्मेति कीर्त्यते। अर्थात जो सबको चारों ओर से घेरे हुए है, जिससे सब गतिशील हो रहे हैं, जिसकी सतत सत्ता है अथवा जिसका कभी अनुभव नहीं है, उसे आत्मा कहते हैं। अथर्ववेद में आत्मस्वरूप का बड़ा सुंदर ही वर्णन मिलता है। अकामो धीरो ह्यमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्च वो न तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवान्। अथर्ववेद अर्थात आत्मा अकाम है, कामना रहित होने से वह सहज ही धीर है, स्थिर है। मृत्यु का भय नहीं होने से वह अमृत स्वरूप है। कारण रहित होने से उसका कर्ता नहीं है, वह स्वंभू है। वह रस से तृप्त है, किसी भी न्यून नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है। वह आत्मा सदा धीर, नित्य नूतन एवं सदा यौवन शक्ति संपन्न है। उस आत्मा को जानकर मृत्यु भय से मुक्ति मिल जाती है। भारतीय दर्शन के वांग्मय में जीव आत्मा और परमात्मा तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है। जब चेतना अपने को पंच भौतिक देह में बद्ध मानती है तो उसकी जीव संज्ञा होती है। देहात्म बुद्धि से जीव भाव का उदय होता है। सत्व रज तम रूप रस स्पर्श गंध आदि जड़ के गुण हैं। जो इन गुणों से रहित हैं वह आत्मा परमात्मा है। ईश आत्मा कवि मनीषी परिभू स्वयंभू सत्य पूषा सूर्य प्रजापत्य पुरुष वायु अनिल आदि अनेक देवों के नाम इस उपनिषद के विविध मंत्रों में प्रयुक्त हुए हैं। इस संबंध में यह प्रश्न उठता है कि क्या ये सब अलग अलग देव ये या एक ही देव के अलग अलग नाम हैं। इसके समाधान में पूर्वापर मंत्रों के संदर्भ को देखते हुए तथा उनकी संगति बैठाते हुए यह कहा जा सकता है एक ही ब्रह्म ईश्वर आत्म तत्व के विविध नामों से स्मरण किया गया है। ये एक ही तत्व के विविध नाम हैं। वेदों में भी यही बात कही गई है। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्य स सुपर्णो गुरुत्मानम एकम सद्विपा बहुधा वदन्त्यग्निम यम मातरिश्वानमाहुः। अर्थात सत्य एक है, किंतु पंडित लोग उसको अनेक नामों से पुकारते हैं। वही अग्नि यम मातरिश्वा इंद्र मित्र और वरुण है। एक ही देव के अनेक नामों से जाना जाता है। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदाद्वयुस्तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः। अर्थात वही अग्नि आदित्य वायु चंद्रमा शुक्र ब्रह्म आप और प्रजापति हैं। यो देवानाम नामधा एक एव अथर्व। अर्थात जो एक देव है वह अनेक नाम धारण करता है।